हमारे बीच हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर सचिन भाई जी पहुंच गए हैं। हम सब आपका दिल से अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं बहनों से आग्रह करूंगी कि बहनें आएं और भाई जी का अभिनंदन करें। आप जो देख रहे हैं, अल्प आयु में ही आपके जीवन के विचार इतने श्रेष्ठ थे, आपको देखकर अनुमान नहीं लगा सकते कि इतनी अल्प आयु में आदरणीय भाई साहब ने कितनी कठिन तपस्या की। जैसा कि आपने शास्त्रों में सुनाई है कि कठिन तप से शिव को प्रसन्न कर लिया, आज आप साक्षात प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने सामने देख रहे हैं कि अपने जीवन की कठिन तपस्या से किस प्रकार परमात्मा को प्रसन्न कर उनका वारिस बन गए हमारे आदरणीय सचिन भाई जी। हम सब तालियों से आपका अभिनंदन करेंगे। आदरणीय सचिन भाई जी लगभग पिछले 13 वर्षों से ईश्वरीय मार्ग पर बड़ी तीव्र गति से कायदे प्रमाण चल रहे हैं। आपका अलौकिक जन्म हम सबके बीच है। लौकिक से आप वरदान भूमि मधुबन में अव्यक्त बाप दादा की रूहानी नजरों और वरदानी बोलों से 30 नवंबर 2003 में इस डायमंड हॉल में बाबा के वारिस बने। आप बचपन से ही मेघावी छात्र रहे हैं। आपने अपनी लौकिक में MBBS की और पश्चात में MD की डिग्री आपने ली और आप FCCM, FICM, FCCS, USA, IDCC इस प्रकार की बहुत सारी डिग्रियां आपके हुनर की बोलती हैं। ऐसी कई डिग्रियों को आपने बहुत कम समय में प्राप्त किया। ईश्वरीय ज्ञान योग की रुचि तीव्र पुरुषार्थ अनायासी लोगों को आकर्षित करता है। प्रभु प्रेम के प्रति जो आपकी अभिव्यक्ति है, शब्दों की गंगा आपके मुख से अविरल निकलती रहती है। ऐसे ऊर्जावान, युद्ध के लिए आदर्श, त्याग तपस्या की मूर्ति, और आपके पास जो कोई पेशेंट भी आते हैं, आपकी मधुर वाणी, आपका सौम्य व्यवहार को देखकर वो यूं ही ठीक हो जाते हैं। आप बीमारियों के लिविंग मसीहा माने जाते हैं और आपको लोग डबल डॉक्टर, सिद्ध हस्त, वैराग्य को जीवन जीने वाले ऐसे सचिन भाई के नाम से लोग नाना प्रकार से आपको पुकारते हैं। आज हम सबके बीच आप आए, हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। आपके लिए सार में इतना कह सकते, अगर तुम ठान लो तो गगन के तारे तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो गगन के तारे तोड़ सकते हो, और अगर तुम ठान लो तो तूफानों का रुख भी मोड़ सकते हो, तूफानों का रुख भी मोड़ सकते हो। ऐसे दिव्यता के धनी आदरणीय सचिन भाई जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप हम सबको अपनी ओजस्वी वाणी से लाभान्वित करें। डॉक्टर सचिन भाई जी,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे,
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे,
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
दिव्यता
में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता।
निर्मोही के तौर करेंगे,
निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे सेत बनेंगे।
ओम शांति। इस सत्र की शुरुआत एक बहुत ही छोटी घटना से करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता लिखी है कहीं, उस कविता में वो लिखते हैं कि मैं भगवान को खोजता था, कई जगह खोजा नहीं मिला। कवि भगवान को खोजने की एक लंबी यात्रा पर है, कभी इस सितारे पर तो कभी उस सितारे पर, नहीं मिला। जीवन बीत रहा था, खोज जारी थी, थक चुका था, खोज जारी थी। और एक दिन अचानक एक जगह ऐसा लिखा दिखा, भगवान का घर, और बहुत खुशी हो गई और चित्त आनंद मगन हो गया, रोम रोम नाचने लगा। जैसे ही देखा कि एक जगह लिखा हुआ है ये भगवान का घर है, लंबी सीढ़ियां थी ऊपर जाने की, कवि चढ़ने लगा भगवान के घर को पाने के लिए, और ऊपर और ऊपर, दरवाजे तक पहुंच गया। और दरवाजे को दस्तक देने ही वाला था तो मन में संकल्प आ गया, यदि ये भगवान का ही घर है और भगवान ने यदि दरवाजा खोल दिया तो मेरी तो खोज ही समाप्त हो जाएगी। इतने समय से जिसे ढूंढ रहा हूं, और यदि वो वही निकला जिसे मैं ढूंढ रहा हूं, तो फिर मेरी खोज का क्या होगा। खोज में इतना आतुर हूं, खोज में इतना रस है, फिर तो जीवन ही जैसे अंत हो जाएगा इस जीवन का। अभी दरवाजे पर दस्तक ही देने वाला है तो हाथ रुक जाते हैं, कदम ठहर जाते हैं, सोचता है दस्तक दू या नहीं दू, और फिर अपनी जीवन की यात्रा को देखता है, अपनी ही उस खोज को, उस अन्वेषण को देखता है और पाता है कि मैं कैसे छोड़ दूं इस खोज को। खोज में ही इतना रस है, और भगवान ने यदि दरवाजा ही खोल दिया तो मेरा क्या होगा। इसलिए कवि लिखता है, मैंने चुपचाप अपने जूते निकाले और अपने हाथ में लिए, पीछे मुड़ा और नीचे उतरने लगा, कहीं भगवान सुन न ले, कहीं दरवाजा खुल न जाए, अंदर जो रहता है उसे ऐसा ना हो जाए कि जैसे कोई बाहर है और दरवाजा खोल दे। तो कवि लिखता है कि मैंने अपने जूते अपने हाथ में लिए और दबे पांव चुपचाप नीचे उतरने लगा, नीचे उतरने लगा, नीचे उतरने लगा, और खोज अब भी जारी है। अब भी ढूंढ रहा हूं, अब भी खोज रहा हूं, अब भी भटक रहा हूं, अब परंतु मुझे पता है कि ये भगवान का घर है और मैं वहां नहीं जाता और सब जगह ढूंढता हूं। क्योंकि यदि वहां चला गया तो खतरा है। मेरी इच्छाओं का क्या होगा? यदि भगवान ही मिल जाए तो संसार की ये जो इच्छाएं हैं वो तो समाप्त हो जाएगी, उनका तो अंत हो जाएगा। कवि लिखता है, मैं खोज रहा हूं, मैं भटक रहा हूं और जीवन इसी में गुजर रहा है। कैसी विडंबना है और कैसा मनुष्य का चित्त है। खोजता है, खोजता है और खोजता है और उसी खोज में कहीं ना कहीं खोया रहता है, आसक्त हो जाता है। खोज में ही मोह है, पता है मंजिल वहां है, पता है यही वो स्थान है, पता है वही यही वो जगह है, परंतु वहां नहीं जाना चाहता। उसे चिंता है किसी और बात की। जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे ये एक ऐसा ही विषय है, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, अर्थात चेतना का जो उच्चतम शिखर है, अर्थात आत्मा की वह खोज, संपूर्ण जागरण की, ज्ञानोदय की, ज्ञान दीप्ति की, उस तक पहुंचना। हर मनुष्य इस अनंत जीवन यात्रा में चाहे वो चाहे या न चाहे इसी एक खोज में है, संपूर्णता की, पूर्णता की, पूर्ण काम होने की, ऐसी अवस्था को पाने की कि वहां पर कुछ और ना हो, कुछ और पाने की कामना ना हो। एनलाइटमेंट अर्थात प्रकाशित करना, अर्थात जागरण, अर्थात विभासित करना, अर्थात संपूर्ण रूप से बोध हो जाना। यदि हम एक नजर संसार के सभी धर्मों पर दौड़ाएं तो धर्म की यह खोज ही एनलाइटनमेंट की है। क्या ऐसी ही खोज हमारी भी है? क्या जीवन की इस यात्रा में हम भी किसी को ढूंढ रहे हैं, किसी को पा रहे हैं और जो अब तक मिला नहीं है? क्या ये खोज कभी पूरी होगी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें उस तक पहुंचा दे, उस लक्ष्य तक, कि जहां पर पहुंचकर जीवन संपूर्ण तृप्ति को उपलब्ध हो? क्या ऐसा भी कोई मार्ग है या जीवन की यह लंबी दौड़ ऐसी ही चलती रहेगी? भाग रहे हैं और भाग रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सब भाग रहे हैं। किसी एक वैज्ञानिक ने बहुत सुंदर चीज लिखी है। वो लिखता है, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, आई हैव स्पेंट माई लाइफ इन रिसर्चिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लाइफ आई फील लाइफ हैज स्लिप्ड थ्रू माई फिंगर्स। लगता है कि जीवन जैसे मेरे हाथों से निकल गया है, एक वैक्यूम खड़ा है जीवन में, हृदय में एक रिक्तता। कुछ करना था नहीं कर पाए, कुछ पाना था नहीं पाए, ऐसे ही दौड़ते रहे, ऐसे ही भागते रहे और जीवन हाथ से निकल गया। तो कैसे हम जागरण लाए इस जीवन में, क्या हम करें, उसकी आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो चर्चा हम करने वाले हैं उसमें कुछ बातें हम आप सबको ऐसी बताएंगे जो हमारे अपने ही जीवन की है। बहुत बहुत समय पहले सिकंदर भारत आया था। भारत में जब वो था तब उसकी मुलाकात किसी एक फकीर से हुई थी और सिकंदर ने देखा था उस फकीर के हाथों में एक बहुत ही चमकीली सी वस्तु है और सिकंदर ने उससे पूछा था कि ये तुम्हारे हाथ में जो है ये क्या है। कहानी शायद झूठी होगी परंतु झूठे होने से उसका सत्य कम नहीं हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे हाथ में क्या है, परंतु सिकंदर ने कहा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं सिकंदर महान हूं, मुझे बताओ। वो कहता है नहीं बताऊंगा। वो कहता है बताओ वरना। वो फकीर कहता है बताऊंगा परंतु पहले तुम ये समझ लो कि ये जो वस्तु मेरे हाथ में है ये इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तुम्हारे पास जितने भी हीरे और जितने भी जवाहरात होंगे वो यदि एक तरफ हो तो भी ये जो वस्तु है ये अमूल्य है, इसका पलड़ा भारी होगा। एक तराजू बुलाया जाता है, सिकंदर अपनी सारी धन दौलत एक पलड़े में डालता है और वो फकीर वो छोटी सी चमकीली वस्तु एक पलड़े में, और देखते ही देखते उस फकीर का पलड़ा भारी हो जाता है। सिकंदर को आश्चर्य होता है ये क्या हो गया। वो फिर उससे पूछता है मुझे बताओ ये तुम्हारे पास जो चमकीली वस्तु है ये क्या है। वो फकीर कहता है बताऊंगा परंतु अब मुझे कुछ और भी करना है, तुम थोड़ी सी मिट्टी मुझे दे दो। सिकंदर उसे मिट्टी देता है और वो थोड़ी सी मिट्टी उस चमकीली वस्तु पर डालता है और जैसे ही उस चमकीली वस्तु पर वो मिट्टी गिरती है फकीर का पलड़ा हल्का हो जाता है। सिकंदर और ही विस्मय विभोर पूछता है ये क्या था, क्या ये वस्तु है। फकीर कहता है ये मनुष्य की आंख है, यदि धूल ना हो तो इस संसार की सबसे बहुमूल्य वस्तु है और यदि इस पर धूल पड़ जाए तो सबसे शुद्र है। किस आंख की यह बात है, यह बात इन स्थूल नेत्रों की नहीं परंतु ज्ञान के उस चक्षु की है, ज्ञान के उस तीसरे नेत्र की है। यदि ज्ञान का यह तीसरा नेत्र खुल जाए और हम यह जान ले सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सार क्या है और असार क्या है, तो यह जीवन धन्यता को उपलब्ध होगा। इस जीवन में हम वह पा सकेंगे जो हम पाना तो चाहते हैं परंतु अस्पष्ट है, पता नहीं क्या है। सब कुछ है पर फिर भी रिक्तता है, सब कुछ है परंतु अपूर्णता है, सब कुछ है परंतु वह खुशी वह आनंद कहीं खो रहा है। उसी आनंद की खोज, उसी तीसरे नेत्र का जागरण अर्थात स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। संसार के हर धर्म ने इसे खोजने का प्रयत्न किया है और हर धर्म ने इसे अलग अलग नाम दिया है। हिंदू धर्म ने उसे मोक्ष कहा, मुक्ति कहा, बौद्ध धर्म में जाओ तो उसे निर्वाण कहा, ज़ेन में जाओ तो उन्होंने उसे किन्शो कहा और किन्शो का जो अनुभव है उसे सैटोरी कहा। जैन धर्म में जाओ तो इसी पूर्णता की अवस्था को केवल ज्ञान कहा। क्रिश्चियनिटी में बी एटीट्यूड, फ्यूशन, सालवेशन, कन्वर्शन, भिन्न भिन्न नाम है, परंतु अनुभव शायद वह एक ही है। अंग्रेजी में ऐसे पांच या चार शब्द है, एक शब्द है फ्लावरिंग, दूसरा है अवेकनिंग, तीसरा है रियलाइजेशन और चौथा है एनलाइटमेंट। यदि हम एक सर्कल बनाएं तो उसमें जो केंद्र है वो एनलाइटमेंट है और जो परिधि है आध्यात्मिक जीवन की उसे फ्लावरिंग कहा है। फ्लावरिंग अर्थात खिलना, अभी अभी जैसे चेतना की कोई एक झलक मिली है, अभी अभी जैसे ज्ञात हुआ है कि ये जो स्थूल देह है यही सब कुछ नहीं, ये जो स्थूल जगत है, ये जो वैभव है, ये जो संपत्ति है, ये जो संपदा है इससे भी परे कोई और संपदा है, ये जो सुख है जो इंद्रिय जनित है उससे भी परे कुछ और है, एक अज्ञात जगत है, उस अवस्था को कहा है फ्लावरिंग। वो हो सकता है यदि आप किसी आध्यात्मिक स्थान पर पहुंच जाओ तो वहां वो फ्लावरिंग हो जाए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो कि जहां दिव्यता झलकती हो, किसी ऐसे व्यक्ति को सुनो जिसकी वाणी में तेज है, ओजस है, पवित्रता के प्रकंपन है, शब्द शब्द चेतना की गहराई से निकल रहा है, वहां पर जो पहली किरण चेतना को मिलती है उसे कहा जाता है फ्लावरिंग ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। वहां से व्यक्ति एक अंतर यात्रा आरंभ करता है और अंदर जाना चालू करता है, और जैसे जैसे अंदर जाता है जागरण होता है, अवेकनिंग, पता चलता है और भी गहराई में कुछ और है, लगता है अब तक का जीवन ऐसा ही चला गया, कितना अच्छा होता कि स्थान पर बहुत पहले आ गए होते, कितना अच्छा होता यदि जो अब सुन रहे हैं और अब जो देख रहे हैं बहुत पहले देखा होता और बहुत पहले सुना होता और बहुत पहले अनुभव किया होता। वहां अवेकनिंग हो रहा है चेतना का, व्यक्ति इस अध्यात्म मार्ग में और आगे बढ़ता है और आंतरिक यात्रा की ओर बढ़ता है, वहां रियलाइजेशन होता है, अनुभव होने लगते हैं, बहुत सारी बातें उसे पता चलने लगती है जो कि यहां पर धुंधला सा था स्पष्ट होने लगता है, चेतना की परतें खुलने लगती है, उसे कहा है रियलाइजेशन। परंतु वो भी संपूर्णता नहीं, संपूर्णता है एनलाइटनमेंट में जो कि केंद्र बिंदु है, और वहां जब वो पहुंचता है तब उसके जीवन के सारे प्रश्न, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। भारत के ऋषियों ने और भारत के मुनियों ने उसके भी आगे की एक अवस्था बताई है बियॉन्ड एनलाइटनमेंट। एक तो कहा सर्वसंपूर्ण अवस्था है एनलाइटनमेंट, परंतु चर्चा है उसके भी आगे की अवस्था की, उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस विषय को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। एक है प्री एनलाइटनमेंट, एक है एनलाइटनमेंट और एक है पोस्ट एनलाइटनमेंट। प्री अर्थात होने से पहले, एनलाइटनमेंट एनलाइटनमेंट अर्थात जब चेतना जागृत हो जाए तो वहां क्या क्या होता है, और उसके भी बाद का जो हमने वर्णन किया है वो है पोस्ट एनलाइटनमेंट। इससे पहले कि हम ये चर्चा चालू करें और एक बात कहने चाहेंगे, चीन में एक बहुत सुंदर चित्र बने हुए हैं, द 10 बुल्स ऑफ ज़ेन, 10 बैल। केवल चित्र है परंतु उन 10 चित्रों में संपूर्ण अध्यात्म समाया हुआ है। केवल चित्र है, उसका कोई वर्णन विवरण डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, केवल चित्र है, 10 चित्र। पहला चित्र है जिसमें एक व्यक्ति जिसका बैल खो गया है उस बैल को ढूंढ रहा है। चित्र में केवल व्यक्ति खड़ा है और ढूंढ रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है, पहला। दूसरा चित्र जिसमें उसे उस बैल के पदचिन्ह दिखे हैं, फुटप्रिंट्स, ये दूसरा चित्र है। तीसरा चित्र है जिसे उस बैल की पूंछ दिखी है, व्यक्ति है और बैल की पूंछ, ये तीसरा चित्र। चौथा चित्र, उस व्यक्ति को वो पूरा बैल दिख गया है। पांचवा चित्र, उस बैल को वो व्यक्ति अपने वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। छठवां चित्र, वो व्यक्ति उस बैल पर बैठ गया है। सातवां चित्र, वो व्यक्ति उस बैल पर बैठकर अपने घर आ रहा है। आठवां चित्र, घर पहुंच गया है और बैल के गले में जो पट्टा है वो उसने निकाल दिया है, बैल है और वो व्यक्ति है। नौवां चित्र, वो व्यक्ति अब आराम से बाहर बैठा है और बांसुरी बजा रहा है, बैल पीछे है। दसवां चित्र, वो व्यक्ति बैल को वहीं छोड़ दिया है, घर को वहीं छोड़ दिया है, शहर में जा रहा है, वहां से कुछ कोई पेय लिया है पीने का, उसमें तो मदिरा दिखाया है और वो पीते पीते आ रहा है। अंतिम जो चित्र है, टेंथ, द टेंथ बुल इज द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट। वो जो बैल है वो जैसे आत्मा है। पहला चित्र, व्यक्ति ढूंढ रहा है उस आत्मा को, उसे खबर नहीं है आत्मा क्या है। दूसरा चित्र, उसे उसकी क्या दिख गई, पूछ, थोड़ी सी झलक मिली है, थोड़ा सा अनुभव हुआ है, ऐसी किसी सभा में वो चला गया है, वहां पर अचानक यकायक यह अनुभव हुआ कि मैं देह नहीं हूं। तीसरा चित्र, पूरा उसे बैल दिख गया, ऐसा अनुभव कि मैं आत्मा हूं, यह देह से परे कोई सत्ता है, और उसका क्षणिक अनुभव, और अब वो उसे पाना चाहता है, झगड़ा करता है, लड़ता है, उस बैल को सिंह पकड़ता है और उसे वश में करने का प्रयत्न करता है। यह संघर्ष की अवस्था है अध्यात्म के राही की। अगला चित्र, वो उस पर बैठ जाता है, ये उसकी विजय है विकारों पर, अतीत पर, जीवन में जो कुछ व्यर्थता है उस पर, जीवन में जो कुछ निगेटिव है, वेस्ट है, सिंफुल है, दोषयुक्त है, अपराध जन्य है। और फिर वो आ रहा है बड़ी ही मस्ती से, एक बहुत ऊंची अवस्था में घर पहुंचता है, और जैसे कि अब वो इतना स्थित है उस अपनी आनंद में कि उसने उसे खोल के निकाल के रख दिया है, वो बैल भाग नहीं रहा है, अब उसका मित्र है। एक चित्र तो उसमें केवल ब्लैंक दिखाया हुआ है जो आठवां चित्र है। नौवां चित्र जो है उसमें दिखाया है कि वो संपूर्ण जैसे एक एनलाइटेंड अवस्था में पहुंच गया है, और जो लास्ट हमने बताया वो अब बाजार में घूम रहा है एकदम साधारण। पता नहीं चल रहा है उसको देख के कि ये इतना ऊंचा और इतना ज्ञानी व्यक्ति होगा। चॉप वुड्स कैरी वाटर कहावत है, बिफोर एनलाइटनमेंट चॉप वुड कैरी वाटर। संबोधि एक शब्द है एनलाइटनमेंट के लिए। संपूर्ण ज्ञान से पहले क्या करते थे, लकड़ी काटते थे और पानी भरते थे। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद भी कट वुड चॉप वुड्स कैरी वाटर, काम वही कर रहे हैं परंतु आत्मा की अवस्था बहुत ऊंची है। अब कार्य में परिवर्तन नहीं हुआ है, वो मार्केट में बाजार में घूम रहा है परंतु अब उसमें बहुत भेद है। जो पहला व्यक्ति था और ये अंतिम व्यक्ति, वो जिससे मिल रहा है, जिसको देखता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ऊर्जा उसे प्रदान कर रहा है। तो एनलाइटनमेंट में सबसे पहली जो स्टेज है वो है प्री एनलाइटनमेंट। इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, एक छोटा सा योग का प्रयोग करेंगे। उसके लिए सभी अलर्ट होके बैठेंगे मेडिटेशन में। वो जो अनादि है और अविनाशी है उसकी एक झलक का अनुभव। स्थूल देह में विराजमान चेतना की वह तेजस्वी किरण, मैं हूं। भ्रुकुटी तख्त पर बैठी मैं आत्मा, ज्योतिबिंदु स्वरूप, अनुभव कर रहा हूं स्वयं को अति सूक्ष्म। देह से न्यारी संपूर्ण मौन, शरीर की सभी हलचल समाप्त, मैं शांति का वह कुंड हूं। मैं शांति का द्वीप स्तंभ हूं। मैं संपूर्ण शांत हूं। शांति की अनंत किरणें मुझ आत्मा से चहुं ओर फैल रही है। अनुभव कर रहा हूं अपने ही निज स्वरूप को, ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे प्री एनलाइटनमेंट की, उस संपूर्ण जागरण से पहले प्री एनलाइटनमेंट। इस प्री एनलाइटनमेंट की 7 अवस्थाएं हैं और जब तक हम उन सभी अवस्थाओं से नहीं गुजरते शायद वह एनलाइटनमेंट की अवस्था नहीं आ सकती। ये किसी किताब में हमने नहीं पढ़ा, ना ही किसी से सुना। जो बातें हम आपको बताएंगे ये वो बातें हैं जिनसे हम स्वयं अपने जीवन से गुजरे हैं। सबसे पहली अवस्था इंटेंस डिससैटिस्फैक्शन, ये जो यात्रा है इंटेंस डिससैटिस्फैक्शन, एक दैवीय असंतोष। जीवन में जो मिला है, जो प्राप्त है, भौतिक वैभव, सुख, संपत्ति, सब कुछ सब है, फिर भी जैसे कहा एक रिक्तता है, ऐसा एक डिवाइन डिसकंटेंट। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, सब अच्छा है, घर है, परिवार है, प्रेम है, सद्भाव है, समाज में प्रतिष्ठा है, नाम है, किसी से झगड़ा नहीं है, सबसे अच्छा व्यवहार है, समाज हमें मानता है और हम भी समाज के प्रति संपूर्ण सकारात्मक है, परंतु फिर भी एक डिवाइन डिसकंटेंट कि कुछ है जो नहीं मिला है, कुछ है जिसे पाना है, कुछ है जब तक वो ना मिल जाए तृप्त नहीं हो सकती है आत्मा। वो पहली अवस्था है और जीवन में इस अवस्था से हर एक को गुजरना होगा। क्यों यह संतोष? हो सकता है जरूर कुछ नहीं है जो होना चाहिए। दूसरी अवस्था है इंटेंस रेस्टलेसनेस, या कहो इंटेंस डिजायर टू नो द ट्रुथ, एक तीव्र इच्छा जानने की, क्या है सत्य, क्या है सत्य, सत्य क्या है, कहां जाऊं, किससे, किस किताब में है, किस संस्था में है, कहां है, वो जानने की अभिप्सा, ये दूसरी अवस्था है कि अचानक से आत्मा में वो इंटेंस डिजायर जागृत हो जाती है कि कुछ तो है जो मिला नहीं है परंतु पाना है, ये दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था है डिवाइन कॉल, जैसे कि एक कॉल आ जाए कहीं से। विदेश में एक संत हुए हैं सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, बहुत बड़े संत, रोमन कैथोलिक सेंट्स में शायद पहले ही संत। उसके जीवन में है कि वो एक युवा था, सैनिक था, संसार में डूबा हुआ था और एक बार यात्रा पर था क्योंकि किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया था, सैनिक में था, सैनिकों के साथ जा रहा था कि अचानक उसे एक आवाज आई, फ्रांसिस 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 टर्न बैक। वो देखता है कौन है, किसकी ये आवाज है, कौन मुझे पुकार रहा है। अपने घोड़े को लेता है, पीछे आता है, घोड़े को पानी पिलाते रहता है, फिर से आवाज आती है, फ्रांसिस 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 गो एंड कंस्ट्रक्ट माई होम माई हाउस इन योर विलेज विच इज इन रूइंस। जाओ और मेरा घर, जहां पर वो जो चर्च होता है वो बहुत ही खंडर बन चुका है, जाओ और जाकर पहले उसको ठीक करो। वो सोचता है ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं। आवाज आती है, एक डिवाइन वॉइस, एक डिवाइन कॉल, और पीछे मुड़ता है, घर वापस आता है। पिता बहुत नाराज होते हैं, देश के राजा उसे फिर से कारावास में डाल देते हैं, भाग कर आया है, और उसी कारावास में संपूर्ण जागरण होता है, चेतना जागृत हो जाती है। जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, क्या मैं कर रहा हूं, किसे मुझे पाना है, सारे प्रश्न आने लगते हैं। तो तीसरा है डिवाइन कॉल। इस संस्था जहां आप बैठे हैं, इस संस्था के जो फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा, उनके जीवन में भी ऐसी ही, जो आपको शायद कल परसों उनकी जीवन गाथा सुनाई जाएगी, उनके जीवन में भी ऐसा ही एक प्रसंग है कि अचानक एक डिवाइन कॉल आ गया। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही। उनका एक पार्टनर होता है, हीरो का बिजनेस होता है, वो कहते हैं अलिफ अर्थात वो, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल कराही। एक डिवाइन कॉल, ये तीसरी अवस्था है। और जब तक ये कॉल नहीं आता है, व्यक्ति इसी संसार में फंसा रहता है, ये तीसरी अवस्था। चौथी, एक गहन एकांत। वो एकांत इतना गहरा होता है कि बाहर से तो दिखता है ये व्यक्ति विड्रॉ कर रहा है, परंतु अंदर की आवाज इतनी तीव्र है कि उसे खींच रही है अपनी ओर, और वो रुक नहीं पाता है। एकांत। उसके बाद एक इंटेंस सॉलिट्यूड के बाद इंटेंस साइलेंस, एक तीव्र मौन, एक ऐसा मौन जो कि उसने धारण नहीं किया है, स्वतः ही आ गया है, अंदर में हलचल हुई है, एक एकांत ने अवतरण किया है हृदय में, और वो एकांत अब खींच रहा है साइलेंस को। ये पांचवी अवस्था। छठवी, इंटेंस डिस्पैशन, इंटेंस डिसइंटरेस्ट। सब कुछ कर रहा है, सबके बीच में है, दोस्तों के बीच में है, परंतु एक वैराग, एक वितराग भाव, क्योंकि अंदर जो हुआ है वो कुछ और है, विड्रॉ कर रहा है संसार से। और सातवीं अवस्था, एक इंटेंस एफर्ट साधना। ये सात अवस्थाओं से आत्मा गुजरती है। हमें याद है अपने ही जीवन में इन सभी अवस्थाओं को हमने अनुभव किया। जब हम छोटे थे, छोटे अर्थात 21 साल, तब ऐसा कुछ हुआ कि जिसने अचानक से इंटेंस डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट किया, पहली अवस्था, और वो डिससेटिस्फेक्शन हमें उस मौन तक ले गया। एक किताब हमने पढ़ी थी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी। 12th स्टैंडर्ड की छुट्टियों में जैसे हमने वो किताब पढ़ी, उस किताब को पढ़ते पढ़ते ही हम मौन हो गए थे 6 मास। लेखक ने लिखा था, जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, द ओनली गोल ऑफ लाइफ इज गॉड रियलाइजेशन। एक दूसरी छोटी किताब हमारे पास थी, बहुत फटी पुरानी, लव ऑफ गॉड। उस किताब में लिखा था, लेखक लिख रहा था सेंट फ्रांसिस डी सेल्स, कि मेरे हृदय में एक तीर चुभा है ईश्वरीय प्रेम का और घाव है द अनहीलिंग वुंड ऑफ गॉड्स लव, धारा बही जा रही है खून की, और उस मौन में एक डिवाइन कॉल जैसे हमें आया, एक इंटेंस रेस्टलेसनेस क्या है। ट्वेल्थ का रिजल्ट आया, बहुत अच्छे मार्क्स, मेडिकल में एडमिशन, परंतु वो कॉल ऐसा था कि अंदर में हलचल मचा दी। सर्च, भगवान कौन है, क्या है, कहां है, हमें नहीं लगता कि संसार में कोई ऐसा धर्म होगा या कोई ऐसी संस्था होगी जहां हम नहीं गए। एक एक धर्म, एक एक संस्था, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, आर्ट ऑफ लिविंग, माता अमृतानंदमयी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, योगादा सत्संग सोसाइटी, बुद्धिज्म, इस्लाम, सिखिज्म, हर धर्म की हर साधना, और ये करते करते एक दिन अचानक हमें पता नहीं था ये संस्था कौन सी है, क्या है। उसी भगवान को खोजते 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 जब हमने ये प्रण कर लिया था जीवन में कि हमें इस संसार का त्याग करना है, जबकि हमारी एमडी में एडमिशन भी हो रही थी एमबीबीएस के बाद, हम इसी हॉल में आए थे पहली बार, और हमें वो सब कुछ देखा था। केवल इस जन्म का नहीं, शायद जन्म जन्म की खोज। यहां कोई बैठा था और जो बैठा था उसे हम जान नहीं रहे थे, पर उसी को ढूंढ रहे थे। और जो बैठा था उसी को पाने के लिए संसार छोड़ने की तैयारी कर चुके थे, और जो बैठा था उसी को पाने के लिए सारा संसार हमारे विरुद्ध हो गया था। सारे रिश्तेदार, और जो बैठा था वो जो भाषा बोल रहा था वो भाषा हमें नहीं सुनाई दे रही थी। वो और हम यहीं पर इसी हॉल में मिले थे, हम वहीं बैठे थे कहीं बीच में, और वह अवस्था देह से न्यारी, संपूर्ण अशरीरीपन, कई घंटों तक हमें लगा कि यही वो स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट है। 30 नवंबर 2003 दोपहर को 3 बजे से लेकर 2 11 बजे तक। इंटेंस डिससेटिस्फैक्शन, इंटेंस डिजायर, इंटेंस कॉल, इंटेंस सॉलिट्यूड, इंटेंस साइलेंस, इंटेंस वैराग्य, और उसके बाद वो इंटेंस अवस्था। और हमें लगता है जब आत्मा इन सभी अवस्थाओं से गुजरती है तो उसे वो मिलता है जिसका कहीं कोई वर्णन नहीं और जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो मौन है। तो अभी हम फिर से एक बार अलर्ट होकर बैठेंगे और अपनी ही जीवन की यात्रा को देखेंगे, बचपन से लेकर तो आज तक जो कुछ हमने पाया है, जो कुछ हमने अनुभव किया है, जिन जिन स्थानों पर हम रहे हैं, उन सभी अवस्थाओं को अपनी आंखों के सामने लाएंगे। जीवन की इस अनंत धारा में मैं एक चैतन्य सत्ता हूं, देख रहा हूं स्वयं को आंखों के सामने। एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, देख रहा हूं उस घर को जहां मैंने जन्म लिया, देख रहा हूं अपने बचपन को, देख रहा हूं अपने मां बाप को, अपने मित्रों को, जीवन का वह शैशवकाल कितना निरागस चित्त था, कितना निष्कलंक, कैसा सब कुछ नया अनुभव हो रहा था यह संसार। देख रहा हूं स्वयं को आगे बढ़ रहा हूं, देख रहा हूं अपने उस स्कूल को, अपने सभी अध्यापकों को, अपने सभी मित्रों को, जीवन के कई पाठ मैंने यहां पढ़े हैं। देख रहा हूं स्वयं को युवावस्था में, उस विश्वविद्यालय को, देख रहा हूं उन सड़कों को, उस घर को, क्या समझ थी मेरी, क्या उमंगे थी, देख रहा हूं अपनी उन भूलों को, अपनी इच्छाओं को, उन तृष्णाओं को, चित्त में उठती उन वासनाओं को देख रहा हूं, कितनी बार गिरा हूं फिर भी नहीं सीखा, देख रहा हूं बार बार गिरना और बार बार उठना, देख रहा हूं उन सबको, उन सभी लोगों को जिन्हें मैं जानता था, और आगे उस नए परिवार को, उस जीवन साथी को, उन बच्चों को देख रहा हूं, उस समाज को, और देख रहा हूं उस ऑफिस को, और देख रहा हूं इस आपाधापी भरे जीवन को, कैसी दौड़ है ये मेरी, कहां मैं भाग रहा हूं, क्या यही जीवन का सत्य है, कहीं भटक तो नहीं गया, कहीं सत्य कुछ और तो नहीं, बचपन से अब तक की यह जीवन यात्रा मेरी आंखों के सामने है, कितना संघर्ष, क्या निष्पत्ति है इन सब की, सोच रहा कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, ओम शांति। प्री एनलाइटनमेंट की इस अवस्था के बाद जो मुख्य अवस्था है उसे कहा जाता है एनलाइटनमेंट संबोधि, संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। क्या है यह अवस्था, किसी किसी को यह अवस्था एकदम से प्राप्त हो जाती है और किसी किसी को लंबे पुरुषार्थ के बाद, कभी कभी अचानक घटना है तो कभी कभी बहुत लंबी साधना के बाद। किसी किसी के लिए ऐसा ये वातावरण एक छोटा सा स्टिमुलस, बड़ा स्टिमुलस बन जाता है जीवन की गति को, यात्रा को, दिशा को, दशा को बदलने वाला। इसके लिए यदि हम देखें तो हर व्यक्ति इस यात्रा पर है, अनंत की यह यात्रा। हमने कहीं सुना है चार प्रकार के घोड़े होते हैं। पहला एक घोड़ा होता है, उसे कितना भी चाबुक से मारो वो हिलता भी नहीं है। दूसरे प्रकार के घोड़े होते हैं, उसे एक बार चाबुक से मारो तो वो चलने लगता है। तीसरे प्रकार के घोड़े होते हैं, जैसे ही चाबुक को देख लेता है, मालिक के हाथ में चाबुक है और चलना चालू करते हैं। परंतु एक चौथे प्रकार के भी घोड़े होते हैं, वो केवल उस चाबुक की परछाई को देख लेते हैं और चलना आरंभ कर देते हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? स्वयं से पूछना है। यदि ऐसा दिव्य वातावरण किसी को मिल जाए और कुछ समय यहां आ जाए और यहां पर यदि आध्यात्मिक चेतना जागृत ना हो जाए तो क्या कहेंगे। बहुत समय पहले यहां पर एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर किसी एक बहुत बड़े आचार्य ने, महामंडलेश्वर ने, अपना अनुभव सुनाया था और कहा था यहां के वातावरण में प्रभु प्रेम की तरंगे हैं। शुद्ध संस्कृति का यह द्वीप है, हवाओं में पवित्रता है, जहां जाओ वहां दिव्यता नजर आती है। एक एक आत्मा जैसे कि एक शिक्षक है, एक धर्म नेता है, एक एक समर्पणमय जीवन इस संसार की जैसे उच्चता है, तो वहां पर हम बैठे हैं। एनलाइटनमेंट में बहुत सारे शब्द है, पहला शब्द है ई फॉर इटर्नल ब्लिस, अर्थात वह अवस्था जिसमें हम निरंतर एक अविनाशी आनंद में रहते हैं। एन अर्थात न्यूनेस, हर सुबह होती है परंतु हर दिन इतनी नवीनता, इतना ऊर्जा का अनुभव संसार में यदि हम देखो, यदि हम देखें तो उठते ही हम देखते हैं लोग उदास होते हैं, दुखी होते हैं, अतृप्त होते हैं, अशांत होते हैं, वही निगेटिविटी से घिरे हुए। परंतु एक एनलाइटेंड सोल जो है उसके जीवन में हर पल प्रतिपल नवीनता है, ऊर्जा इतनी भरी है आत्मा में, वह उमंग, वह उत्साह का अनुभव। ई एन एल लिबरेशन, वो देह छोड़कर प्राप्त होने वाली मुक्ति नहीं परंतु यात्स देही यात्स जन्मी, इसी देह में और इसी जन्म में ऐसी आत्माएं मुक्ति का अनुभव करती है। किस मुक्ति का? तनाव, इस संसार के वायुमंडल में रहते हुए भी यह अनुभव कि मैं इन सब से मुक्त हूं, यह एनलाइटेंड स्टेट है। उस तक पहुंचने की यह यात्रा है। ई एन एल आई अर्थात इनसाइट, एक अंतर्दृष्टि। जीवन के जो घटनाएं हो रही है उन्हें हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि उसमें छिपे हुए कुछ रहस्य हमें पता चलते हैं, क्यों ये जीवन में हुआ। कई ऐसी आत्माएं हैं जो ये सोचती है कि जीवन में ये नहीं होना चाहिए था परंतु शायद वही वरदान था। आई के बाद एन ई एन एल आई जी, ग्रैटिट्यूड का भाव, कोई कंप्लेंट नहीं किसी बात में। हमें याद है यहां पर ही किसी ने कभी सुनाया था कि दो भाई थे, यहीं पर सेवा के लिए आए थे शांतिवन में, सुबह से लेकर रात तक सेवा कर रहे थे, इतने सारे गेस्ट यहां आते हैं, भाग दौड़। तो दोनों भाई थक गए, किचन में गए, 11 बज चुके थे, देखा कि सब कुछ खत्म हो गया है, थोड़ी रोटियां रखी है वो भी कड़क हो गई है। तो एक भाई जो था, एक सेवाधारी जो अभी अभी जैसे इस संस्था से जुड़ा था, इतना दुखी हो गया और कहने लगा कि दिन भर हमने इतनी सेवा की और ये मिला रोटी, वो भी कड़क। और गुस्सा होकर चला गया और सो गया, पर नींद भी कैसे आएगी, रात भर करवटें बदलता रहा। उसी के साथ एक दूसरा भी भाई था, वो भी आया उसी समय भी 11 बजे, परंतु इसके चित्त की दशा कुछ और थी। वो धन्यवाद देने लगा भगवान को, वाह क्या मेरे भाग्य, इतनी मैं एक धन्यवाद के भाव से स्वयं को भरना है। भाई दूसरा आया और उसका हृदय आनंद से भरा हुआ, धन्यवाद देने लगा, बाबा तुम्हारी कमाल है, रोटी तो रखी वो भी तोड़कर, एक ही परिस्थिति परंतु हम उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जीवन में वह अहभाव हो, जो जो व्यक्ति हमारे जीवन में आए हैं, जो जो अभी है, उन सब के प्रति, इस प्रकृति के प्रति निरंतर उनका, सुबह एक बार जब हम थोड़े देर बैठे ही मेडिटेशन में और उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद दे, उस परम सत्ता को धन्यवाद दे, यह एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड चित्त को पॉजिटिविटी से भरेगा। अगला है एच अर्थात ह्यूमिलिटी। जितना व्यक्ति ऊंचा जाता है, उसकी ऊंचाई नापने का साधन ही है उसकी निरंकारिता। दिखाया है ज़ेन मास्टर रिंझाई था कभी, उसने लिखा है कि मैं अपने गुरु के घर में 30 साल तक रहा और एक दिन अचानक उस आश्रम में गुरु की जो सीट थी वहां जाकर बैठ गया देखने के लिए कि गुरु क्या करते हैं। उसके गुरु आते हैं और नीचे जाकर बैठ जाते हैं जो कि उसकी सीट होती है स्टूडेंट की। तो रिंझाई पूछता है अपने मास्टर से कि क्या आपको क्रोध नहीं आया, क्या आप अपमानित नहीं हुए? वो कहते हैं अपमान की क्या बात है, तुम जब आए थे तो यहां पर एक विद्यार्थी थे, विद्यार्थी से शिष्य और शिष्य से अब गुरु बन गए हो, इसकी मुझे खुशी है। अब मेरा काम तुम करो। तो जो दिखाया है 10 बुल्स जिसमें जो 10वां पिक्चर है वो इसका है कि व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हो गया है परंतु वो सड़क पर ऐसे घूम रहा है जैसे साधारण सा व्यक्ति, परंतु जिन जिन के संपर्क में जा रहा है वहां चेतनाएं जागृत हो रही है। ऐसी पावर है एक अदृश्य। एच, एच के बाद टी, टी अर्थात ट्रांसपेरेंसी। जीवन पारदर्शी है, कुछ उसमें छिपाने जैसा नहीं है। इस अवस्था तक हमें पहुंचना है। एम, एम अर्थात मेडिटेशन। वो मेडिटेशन नहीं कि एक घंटा सुबह बैठ लिया और एक घंटा शाम में बैठ लिया, जीवन ही मेडिटेशन है। लाइफ इटसेल्फ इज मेडिटेशन, अ कॉन्स्टेंट मेडिटेशन। ऐसी चेतना की अवस्था जागृत अवस्था है, संपूर्ण जिसमें जागरण है, जागरण और जागरण, अवेयरनेस, अलर्टनेस, हर चीज के बारे में अलर्टनेस है। एम, ई, ई फॉर इजीनेस, सरलता है, सहजता है, कोई खींचातान नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, मैं मेरा तू तेरा नहीं, ऐसी चेतना की अवस्था। ई, एन, एक एन हमने कहा न्यूनेस, नोवेल्टी। एक दूसरा भी एन है, ये है नेवर फेलिंग, नेवर क्राइंग, नेवर कंप्लेनिंग। किसी बात की कंप्लेंट नहीं है, जो है जैसा है स्वीकार किया है मन से, परिस्थिति को, व्यक्तियों को। जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हम चाहते हैं कि ये ना हो, परंतु शायद ये ना हो संकल्प ही बाधा है। जैसे ही हम आंतरिक भाव से स्वीकार करते हैं, वातावरण बदल जाता है। हमें याद है हम किसी एक आश्रम में गए थे, वहां पर एक ही जो स्टूडेंट्स थे आने वाले एक सेंटर में, केवल 2 ही थे 10 साल से। तो वहां हमने उस आत्मा से पूछा था, क्या यहां 2 ही है, क्या आपको नहीं लगता कि अधिक से अधिक लोगों को ये ज्ञान मिले? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, हम प्रयत्न तो बहुत करते हैं परंतु ये जो एरिया है अलग प्रकार का है, यहां पर लोग इनकी दिनचर्या और ये अलग भांति का है। परंतु उन्होंने एक बात जो कही जो अब तक मुझे याद है, उसने कहा था इस परिस्थिति को मैंने प्रेम से स्वीकार किया है। इसके पहले कहीं और थी, वहां पर बहुत विस्तार था और बहुत बिजी लाइफ थी, परंतु यहां अब जब से हूं ये ऐसा ही है, सब करने के बाद भी इसको मैंने प्रेम से स्वीकार किया है। क्योंकि इसे जिन परिस्थितियों को हम बिल्कुल ना बदल सके, जिन व्यक्तियों को उन्हें स्वीकार करना, तो जीवन हमें आगे बढ़ाएगा। एन, और लास्ट में है फिर से टी। एक टी कहा था ट्रांसपेरेंसी, ये टी है ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे जो संस्कार है, कड़े संस्कार, कड़े स्वभाव, यही हमारे दुख का कारण है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे दुख का कारण नहीं है, हम स्वयं हैं। स्वयं की चेकिंग करना और उन संस्कारों का, उन स्वभाव का, उस नेचर का, उस हैबिट्स का रूपांतरण करना। तो ये अवस्था है एनलाइटनमेंट की। हमने कहा था एक तीसरी भी अवस्था है जिसे कहा पोस्ट एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट वो क्या है? दिखाया है थेरावाड़ा बुद्धिज्म में महात्मा बुद्ध शरीर छोड़ देते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, दिखाया, और वो द्वारपाल कहता है आइए आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं आऊंगा, जब तक एक एक व्यक्ति को इस संसार के दुखों से मुक्त नहीं कर देता तब तक मैं खुद अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ये जो अवस्था है पोस्ट एनलाइटनमेंट की अवस्था है जिसमें व्यक्ति इस संसार में ही रुकता है सेवार्थ। जैसे दिखाया है एक गांव है, उस गांव में एक दीवार है और ऐसी अद्भुत घटनाएं उस गांव में होती है कि जो भी दीवार पर चढ़ जाता है और दीवार के उस पार क्या है देख लेता है, कूद जाता है और वापस नहीं आता। गांव वालों को आश्चर्य है कि उस दीवार के उस पार है क्या, कैसे पता चले, क्योंकि जो भी चढ़ता है उस दीवार पर और जैसे देखता है उसका चेहरा बदल जाता है, एक रौनक एक खुशी आ जाती है और वो व्यक्ति उधर कूद जाता है और इधर नहीं आता। तो गांव वाले एक युक्ति करते हैं, जब भी अगला व्यक्ति चढ़ने जाता है उसके पैर पर रस्सी बांधते हैं, जैसे ही दीवार पर चढ़ता है उसे खींच लेते हैं, परंतु आश्चर्य है कि जैसे ही वो व्यक्ति नीचे आता है उसकी जबान चली जाती है, अब बोलेगा कैसे, कैसे बताएगा उस पार क्या है। दिस इज द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस, उस वॉल के उस पार जो है वो एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस है, संपूर्णता है। कुछ आत्माएं इस दीवार के ऊपर बैठी रहती है, किस लिए, इस संसार के कल्याण के लिए, ये बताने के लिए, ये खबर देने के लिए कि इस दीवार के उस पार भी कुछ है, कुछ ऐसा आनंद है और वो ये करो तो तुमको मिलेगा। द वॉल ऑफ रिलेटिव कॉन्शियसनेस। हमारे यज्ञ की, इस संस्था की हमारी सारी दादियां हम सोचते हैं उसी दीवार पर बैठी हुई है और सारे संसार को ये बताने के लिए कि उस पार क्या है, वो संपूर्णता की मंजिल क्या है, क्योंकि ये संसार के लोग कैसे जान पाएंगे। कुछ तो आत्माएं ऐसी है जो उधर चली गई, बौद्ध धर्म ने उनको कहा है अरहत, परंतु जो संसार में रहते हैं उन्हें कहा बोधिसत्व। जो रहते हैं संसार में संसार के कल्याण के लिए, जैन धर्म ने भी उनको नाम दिया है कैवल्य ज्ञान, एकल एकल ज्ञान। जो उस कैवल्य को पा जाते हैं वो उधर चले जाते हैं, परंतु कुछ यहां रहते हैं तीर्थंकर उन्हें कहा। तो पोस्ट एनलाइटमेंट, बियॉन्ड एनलाइटमेंट की भी एक अवस्था है कि जिसमें आत्मा इतनी भरपूर हो गई है, सब कुछ पा लिया है और उसके बाद इस संसार में फिर भी रुकी हुई है, इसलिए एक ही उद्देश्य है सेवा। किस तरह से सेवा, संकल्प से, बोल से, कर्म से, संबंध से, संपर्क से, वृत्ति से, दृष्टि से, दृष्टिकोण से, चलन से, अपने लेखनी से, अपनी बुद्धि से, अपने तन से, अपने धन से, भाव से, भावना से, स्मृतियों से, स्वप्नों से, यही उनका एकमात्र लक्ष्य है। तो ये जो अवस्था है चेतना की, पोस्ट एनलाइटनमेंट की अवस्था है। तो हमारी ये जो यात्रा है वो है एनलाइटनमेंट की। तो अभी इस क्लास को पूरा हम एक फिर से योग के छोटे से अभ्यास से करेंगे, फिर से सभी अलर्ट होके बैठेंगे और इसमें हमें कुछ बातें करनी है। पहली बात तो आंखों के सामने उन सभी लोगों को इमर्ज करना है जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, और उन सभी को दिल से धन्यवाद देना है। उन्होंने जो कुछ भी किया, चाहे दुख दिया, पीड़ा दी, यातनाएं पहुंचाई, सताया, जो कुछ भी किया, वास्तव में वो हमारा ही तो हिसाब किताब था, वास्तव में वो हमारे ही तो कर्म थे जो कि लौट कर आए हैं, उन सभी का, हर आत्मा का, इस प्रकृति का, उस परमात्मा का जो आप लोगों को यहाँ ले आया इस वातावरण में, इस पवित्र प्रांगण में, उन सभी बहनों का, उन सभी भाइयों का जीवन में बचपन से अब तक, माँ बाप से लेकर तो भाई बहन से लेकर तो सभी का धन्यवाद करना है। और यही हमें एक दिन उस एनलाइटनमेंट तक ले जाएगा। तो सभी तैयार चले। आत्मा, इस प्रांजल वातावरण में आज स्वयं को धन्य धन्य अनुभव करती हूं। कितना ये मेरा भाग्य है, कितना सुंदर ये दिवस है जहां संसार विकारों में और वासनाओं में डूबा है, वहां आज मैं आत्मा इस पुण्य भूमि में बैठी हूं। मैं आज एक अलौकिक आनंद से भरपूर हूं। जीवन की इस यात्रा में आज जो मैंने पाया है अपूर्व है, किसी किताब में यह नहीं, किसी स्थान में यह नहीं, किसी संसार के व्यक्ति द्वारा यह नहीं। कौन लाया है मुझे, देख रहा हूं मेरे ही अपने पुण्य ढकेल ढकेल कर मुझे यहां तक ले आए हैं। देख रहा हूं उस एक परम सत्ता की कृपा हुई है। कितना मैं भाग्यशाली हूं। जीवन धन्यता से भर गया है। अब कोई शिकायत नहीं किसी के प्रति। जो है जैसे है सब मुझे स्वीकार है। इस परम साक्षी भाव में मैं स्थित हूं। देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने अपने घर को, वहां के सभी व्यक्तियों को, और आज मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देख रहा हूं अपने ऑफिस को, अपने वरिष्ठों को, अपने साथियों को, छोटों को, इन सभी को मैं पॉजिटिव और प्योर एनर्जी प्रदान कर रहा हूं। एक एनर्जी का, एक ऊर्जा का सकारात्मक घेरा निर्माण हो रहा है। मुझसे यह सकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण ऑफिस में प्रवाहित हो रही है। मुझसे यह दिव्य ऊर्जा मेरे उस घर तक पहुंच रही है। आंखों के सामने वो सभी व्यक्ति खड़े हैं जिनके मैं रोज संपर्क में हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं देख रहा हूं प्रकृति को, प्रकृति के ये पांचों तत्व भी मेरी उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे, और धन्यवाद करता हूं उस परमात्मा को जिसने जीवन को इस धन्यता से भर दिया, उस पवित्रता से भर दिया। कैसी निर्बोज अवस्था है, निर्भार अवस्था। आज कितना ये हल्कापन महसूस कर रहा हूं, जैसे किसी ने बोझ खींच लिया है और इसी ऊर्जा को लेकर और इसी ऊर्जा से भरपूर होकर मैं आज से एक नव जीवन आरंभ करता हूं। एक जागृत जीवन, एक प्रबुद्ध जीवन, एक संबुद्ध जीवन, एक पॉजिटिव लाइफ, एक एनलाइटेंड लाइट, एक अवेकंड लाइट जीवन में भर रहा है। ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत दिल से आभार आदरणीय भ्राता जी का, आपने हमें इतने सुंदर शब्दों में इतना सुंदर दिशा निर्देश दिया। आपके लिए इतना कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो स्वयं बोलता है, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं आप, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं आप, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं आप। कैंचियां क्या रोकेंगी इनको उड़ने से, कैंचियां भी क्या रोकेंगी इनको उड़ने से, क्योंकि परों से नहीं अपने हौसलों से उड़ा करते हैं आप, अपने हौसलों से उड़ा करते हैं आप। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर हम सबको विषय दिया।